आस्तिक इस वक्त अपनी माँ के कमरे में सो रहा था। वो पूरी रात अपनी माँ के कमरे में ही था। ताई वहां से चली गई थी। वो चाहती तो इस वक्त महल छोड़कर भी जा सकती थी, लेकिन उन्हें पता है कि आस्तिक इस वक्त अकेला है, कोई भी उसके साथ नहीं है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। भले ही उन्होंने आस्तिक को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसकी परवरिश तो की थी ना, ऐसे कैसे वो आस्तिक को छोड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों तक, जब तक आस्तिक संभल नहीं जाता। वो जानती है कि आस्तिक ने जो कुछ भी किया है वो गुस्से और नफरत की वजह से किया है। जिस दिन उसके गुस्से की दीवार टूट जाएगी, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बाकी सबको पता था कि ताई इस वक्त महल में आई हुई हैं और वो आस्तिक को संभाल रही हैं। सुबह हो चुकी थी। आस्तिक अभी भी अपनी माँ के कमरे में ही सो रहा था कि तभी दरवाज़ा खुलता है और एक नौकर अंदर आता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, राजा साहब, राजा साहब, जल्दी उठिए, गजब हो गया है। आस्तिक की नींद में खलल पड़ती है और वो गुस्से में उस नौकर को देखते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी जान ले लूँ। नौकर डर तो जाता है, पर फिर भी उसने हिम्मत करते हुए आस्तिक को देखकर कहा, राजा साहब, बाहर बाहर पुलिस आई है। जैसे ही नौकर ने ये कहा, आस्तिक की आंखें सख्त हो गईं। बाहर पुलिस आई है? लेकिन पुलिस क्यों आई है? आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और नौकर को देखते हुए कहता है, बाहर पुलिस आई है, लेकिन पुलिस क्या करने आई है यहाँ पर? उस नौकर ने डरते हुए कहा, पुलिस अकेली नहीं आई है, छोटे कुंवर सा उनके साथ हैं और वो लोग आपको गिरफ्तार करने आए हैं। जैसे ही आस्तिक ये सुनता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो हैरान हो जाता है। आस्तिक अपने कपड़े झाड़ता है और अपने रौबदार और राजा वाले अंदाज में कैमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आता है, जहां पर रजत पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मौजूद था और उसके साथ ताई खड़े होकर कुछ बात कर रही थी, पर उनके चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। आस्तिक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों के साथ इस समय रजत और उसकी टीम भी मौजूद थी, और रजत का इस घर से क्या रिश्ता है, यही जानते हुए आस्तिक ने अपने गुस्से पर काबू रखा हुआ था। आस्तिक हॉल में आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वो किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। अपने चेहरे पर वही गुरूर और एटीट्यूड रखते हुए आस्तिक रजत को देखकर कहता है, क्या बात है रजत, सुबह सुबह मिलने की कोई खास वजह है क्या? अगर तुम्हें आना ही था तो कीर्ति को साथ लेकर आते। लेकिन रजत ने आस्तिक को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, माफ कीजिए राजा साहब, लेकिन मैं यहाँ पर किसी रिश्तेदार की हैसियत से नहीं आया हूँ और ना ही आपके बहनोई की हैसियत से आया हूँ जो मैं कीर्ति को अपने साथ लेकर आता। मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ। आस्तिक अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। रजत अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका एक सहकर्मी उसके हाथों में फाइल रख देता है। रजत उस फाइल को लेकर आगे आता है और आस्तिक के सामने टेबल पर रखते हुए कहता है, आप गिरफ्तार हो चुके हैं राजा साहब। आस्तिक ने उस फाइल पर नजर तो डाली, लेकिन उसने उसे उठाकर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने अपनी कोल्ड नजरों के साथ रजत को देखा और एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा, और तुम मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो ऑफिसर रजत? एमएलए पवार और उसके साथी राजेंद्र कुमार की हत्या के लिए। रजत ने जैसे ही ये कहा, आस्तिक की आंखें एकदम से सख्त हो गई हैं। आस्तिक ने गुस्से में अपने मन में कहा, रजत को इस बारे में कैसे पता चला? लेकिन आस्तिक एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा रखने में माहिर था। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और एक शांत औरे के साथ रजत को देखकर कहा, फालतू में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम रजत, मैंने किसी का खून नहीं किया है, और अगर किया भी है तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रजत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम आस्तिक की तरह बढ़ाते हुए कहता है, आपको क्या लगता है राजा साहब, मैं बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी टीम लेकर आया हूँ यहाँ पर? रजत ने एक कांस्टेबल को बुलाया तो वो लैपटॉप लेकर जल्दी से आस्तिक के सामने आता है और टेबल पर रखकर एक वीडियो प्ले कर देता है। उस वीडियो को देखकर आस्तिक के होश उड़ गए थे और उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। आस्तिक को ऐसा देखकर रजत के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है, और जब ताई उस वीडियो को देखती हैं तो उनकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एमएलए पवार और राजेंद्र वही लोग थे जिन्होंने सीमा के बलात्कार करने में प्रताप का साथ दिया था। प्रताप को तो आस्तिक बहुत पहले ही मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन उसकी पहुंच अभी भी पवार और राजेंद्र तक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि ये दोनों पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, इसीलिए इन पर सीधे वार नहीं किया जा सकता था। इसीलिए आस्तिक घाट लगाए हुए बैठा था और इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन आस्तिक की एक खबरी ने बताया कि ये दोनों नेता जयपुर के पास एक फार्म हाउस में अपनी अय्याशी कोठे में पूरा करने आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को बुलाया है। आस्तिक को यही मौका सही लगा था। उसने दो प्रोस्टिट्यूट को हायर किया और उन लड़कियों के साथ उन दोनों के पास फार्म हाउस में भेज दिया।
रात के वक्त जब वो दोनों अपनी अय्याशियों का जश्न मना रहे थे, तब जाकर उन दोनों लड़कियों ने चुपके से आस्ती के लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। वो दोनों जहां पर लड़कियों के साथ कमरे में रंग रलियां मना रहे थे, तो वहीं पर आस्तिक उनके कमरे में पहुंच गया। दोनों नेता सिर्फ अंडरवेयर में खड़े थे और आस्तिक ने उन्हें ना तो समझने का मौका दिया और ना ही कुछ कहना जरूरी समझा, क्योंकि उन दोनों को अपनी आंखों के सामने देखकर आस्तिक का रहा सहा सब्र भी टूट गया था। इसीलिए आस्तिक ने अपनी गन से उन दोनों को वहीं पर शूट कर दिया था। जो लड़की उन दोनों के साथ थी वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। आस्तिक ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और उसे चुप रहने के लिए कहा। साथ में ये धमकी भी दी कि अगर आस्तिक के खिलाफ किसी के सामने कुछ कहेगी तो इन दोनों से बुरी हालत उस लड़की की होगी। वो फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था और वहां के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी भी नहीं था, क्योंकि ये दोनों नेता थे और समाज के सामने उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी और समाज सेवा के तौर पर थी। इसीलिए इन लोगों ने ऐसी जगह चुनी जहां पर कोई इन्हें पकड़ा ना जा सके। पर अफसोस, इस बार उनकी मौत उन्हें यहां तक लेकर आई थी। आस्तिक को भी यही लगा था कि इस फार्म हाउस में और उसके आसपास तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन वो हैरान रह गया जब फार्म हाउस के अंदर की एक सीसीटीवी फुटेज उसके सामने चल रही थी।